नमस्कार भारत, तारीख 23 अक्टूबर दिन रविवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। मोसुल को इस्लामिक स्टेट के कब्जे से छुड़ाने के लिए जारी संघर्ष में इराक के साथ शामिल होना चाहता है तुर्की भी। इराक ने इसे अपने देश का मामला बताकर किया इनकार। सुनाएंगे कि मोसुल में कैसे जिंदगी बिता रहे हैं लोग। समाजवादी पार्टी में पारिवारिक विवाद अपने चरम पर, जारी है मुलायम अखिलेश की बैठकों का दौर। न्यूज मेकर में ड्रिवन द विराट कोहली स्टोरी के लेखक विजय लोकपल्ली से खास बातचीत, और भारत ने जीता कबड्डी वर्ल्ड कप। खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, मानसी दास से। तुर्की ने कहा है कि इराकी शहर मोसुल को खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले इस्लामी चरमपंथी समूह के कब्जे से छुड़ाने की मुहिम में वो शामिल होना चाहता है। तुर्की के प्रधानमंत्री बिनाली यिल्दिरिम ने कहा है उनके लिए कदम उठाना जरूरी हो सकता है, क्योंकि इराक और अमरीका ने अपना वादा नहीं निभाया और शिया विद्रोहियों और कुर्द अलगाववादियों को इस मुहिम में शामिल किया। इराक ने कहा है कि इस मुहिम में तुर्की की सेना को शामिल करने का अभी कोई जरूरत नहीं है। सीरिया में रूस की तरफ से घोषित किए गए 3 दिन के एक तरफा युद्ध विराम के खत्म होने के बाद अलेपो शहर में भारी लड़ाई और हवाई हमले शुरू हो गए हैं। शेख सईद और सलाह अल दीन के नज़दीकी इलाकों में रक्षापंक्ति के पास कई जगहों से झड़पों की और गोलीबारी की खबरें आ रही हैं। कथित तौर पर हवाई हमलों में विद्रोहियों के कब्जे वाले कुछ इलाकों को निशाना बनाया गया है। हालांकि ये हमले रूसी या सीरियाई विमानों ने किए हैं, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। व्हाइट हेलमेट सिविल डिफेंस ग्रुप के लिए स्वयंसेवक का काम करने वाले एलेपो निवासी इस्माइल अल अब्दुल्लाह ने सीरिया के बारे में बीबीसी को बताया। युद्ध विराम खत्म होने के 3 घंटों के बाद से अब तक मैंने रक्षापंथी पंक्ति पर बम गिरते देखे हैं। मैंने पुराने शहर की रक्षापंक्ति के पास से वाकई ज्यादा लड़ाई, बड़ी लड़ाई सुनी है। ये पुराने शहर के नज़दीक था। हमने रेडियो पर सुना कि लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर हमारे आसमान में हैं। अभी तक नागरिकों पर हवाई हमले नहीं हुए हैं। ये थे अलेपो निवासी इस्माइल अल अब्दुल्ला के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। उधर संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि युद्ध विराम के दौरान अपने कर्मचारियों की सुरक्षा की गारंटी न मिलने के कारण विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों से वे किसी को भी बाहर नहीं निकाल पाए हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुने जाने पर पहले 100 दिनों के भीतर वो क्या क्या काम करेंगे इस बारे में एक रूपरेखा पेश की है। पेंसिल्वेनिया में एक भाषण के दौरान रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ट्रंप ने कहा कि वो वॉशिंगटन में जो भ्रष्टाचार देख रहे हैं उससे निपटना चाहते हैं। उन्होंने कहा इस रूपरेखा में विधायकों के कार्यकाल की अवधि सुनिश्चित करना और लॉबिंग यानी पैरवी पर प्रतिबंध लगाना भी शामिल है। उन्होंने वादा किया कि वो देश के व्यापार समझौतों पर दोबारा चर्चा करेंगे और चीन को मुद्रा में हेरफेर करने वाला घोषित करेंगे। ट्रंप ने कहा कि उनका उद्देश्य है अमरीका में नौकरियां वापस लेकर आना। अमरीकी दूरसंचार कंपनी AT&T फिल्म और मीडिया कंपनी टाइम वार्नर को $8,500 करोड़ से अधिक दाम पर खरीदने के लिए तैयार हो गई है। अब से थोड़ी देर पहले दोनों कंपनियों की बोर्ड मीटिंग में इस सौदे पर सहमति बनी, हालांकि इस सौदे पर अभी नियामकों का अनुमोदन होना बाकी है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। कार्यक्रम की शुरुआत हम अंतर्राष्ट्रीय खबर से कर रहे हैं। इराक के शहर मोसुल को इस्लामिक स्टेट के कब्जे से छुड़ाने के लिए इराक और अमेरिका ने मुहिम छिड़ी हुई है। इराकी सेना ने इसके लिए कुर्द पेशमुर्ग लड़ाकों का सहयोग लिया है। इराक के पड़ोसी देश तुर्की का कहना है कि इस मुहिम में उसे भी शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन इराक ने उसे अपने देश का मामला बताकर तुर्की को इस मुहिम में शामिल करने से इनकार कर दिया है। क्यों शामिल होना चाहता है मोसुल को छुड़ाने की लड़ाई में तुर्की? क्या है पूरा मामला? बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुनिए मानसी दास से।
जब इराकी शहर मोसुल को इस्लामिक स्टेट के चुंगल से छुड़ाने की मुहिम चल रही है तो हम चुप नहीं रह सकते, यह कहना है तुर्की का। इराक के दूसरे बड़े शहर मोसुल को खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले समूह से छुड़ाने के लिए इराक और अमेरिका ने मुहिम छेड़ी हुई है। साल 2014 से इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाले मोसुल को छुड़ाने के लिए कुर्द पेशमुर्गा लड़ाकों के सहयोग से इराकी सेना और अमरीका के नेतृत्व में मुहिम चलाई जा रही है। सोमवार से शुरू हुई इस मुहिम में इराकी सेना दक्षिण की तरफ से आगे बढ़ रही है और कुर्द लड़ाके पूर्व की ओर से। तुर्की का कहना है कि इस मुहिम में उसे भी शामिल किया जाना चाहिए। बुर्सा में अपने समर्थकों से बात करते हुए तुर्की के राष्ट्रपति रिचप तैयप अर्दोआन ने कहा कि उनका देश सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट से लड़ता रहेगा। सीरियाई शहर इदलिब, एलेपो, मानबीज, अल हसाका, इराकी शहर मोसुल, किरकुक और हमारे भाई बंधु जो इन शहरों में रहते हैं, हम उनकी सुरक्षा के बारे में सोच रहे हैं। हम केवल शांति, स्थिरता और स्थायित्व चाहते हैं हमारे अपने नागरिकों के लिए और इलाके के अपने भाइयों के लिए। बीते वक्त से अलग हम आज जो करने के लिए तैयार हैं वो है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपने हाथों से शांति और स्थिरता लाने की कोशिश करना चाहते हैं। ये थे तुर्की के राष्ट्रपति रिचप तैयप अर्दोआन। लेकिन इराक ने तुर्की की इस गुजारिश से इनकार कर दिया है। इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने अमरीकी रक्षा सचिव एश कार्टर से कहा कि तुर्की को इस मुहिम में शामिल करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। कार्टर फिलहाल इराक में हैं और इस्लामिक स्टेट को हराने की मुहिम का जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी का कहना है, प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने कहा, तुर्की के साथ अच्छे संबंध रखना हमारे लिए जरूरी है। उनके साथ किसी मुद्दे पर उलझना कतई जरूरी नहीं, और यह भी जरूरी है कि हम तुर्की के साथ काम करते रहें क्योंकि वो हमारा पड़ोसी देश है। लेकिन मोसुल पर दोबारा कब्जा करने की लड़ाई इराक की लड़ाई है, और जो इस लड़ाई में हिस्सा ले रहे हैं वो इराकी हैं। मैं जानता हूं कि तुर्की भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं, लेकिन इस मामले को इराकी संभालेंगे और इराकी ही मोसुल और अन्य इलाकों को आज़ाद कराएंगे। ये थे इराकी प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी। तुर्की के सुन्नियों को डर है कि मोसुल की फिर से आज़ादी शिया मुसलमानों और कुर्द लड़ाकों के सहयोग से होगी। तुर्की का कहना है कि सीरिया के कुर्द लड़ाकों के संबंध तुर्की के कुर्द विद्रोही समूह पीकेके के साथ हैं। तुर्की में पिछले साल हुए कई हमलों के लिए पीकेके को जिम्मेदार बताया गया था। तुर्की प्रधानमंत्री बिनाली यिल्दिरीम ने कहा है कि उनके लिए कदम उठाना जरूरी हो सकता है क्योंकि इराक और अमरीका अपने वादे से मुकर गए हैं और उन्होंने शिया विद्रोहियों और कुर्द अलगाववादियों को इस मुहिम में शामिल किया है।
तो जैसा कि आपने सुना, इराक में मोसुल को इस्लामिक स्टेट के कब्जे से छुड़ाने के लिए सेना की बड़ी कार्रवाई जारी है। इसके बाद हजारों इराकी लोग अपने घर छोड़कर भाग निकले हैं। कुछ परिवारों ने शहर के दक्षिणी हिस्से का रुख किया है। ये लोग इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों से खुद को बचाने के लिए कई तरकीबें निकाल रहे हैं। इन सारी घटनाओं ने मोसुल की एक बेहद दुखद तस्वीर दुनिया के सामने रखी है, जो कि पिछले दो साल से आईएस के कब्जे में है। बीबीसी पश्तो सेवा की रिपोर्ट का सार सुनिए निखिल रंजन से।
मोसुल का दक्षिणी हिस्सा अल शुरा इन दिनों इस्लामिक स्टेट के कब्जे से भागे इराकियों का डेरा बना हुआ है। इराक की सरकारी सेना की मोसुल को मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू होने के बाद इन लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। इस्लामिक स्टेट के चंगुल से निकलने की इतनी जल्दबाजी थी कि जिसके हाथ जो लगा वही लेकर चला आया। एक महिला ने कहा,
हम लोग अपना सामान कार में रख कर चले आए। आईएस के लड़ाकों ने हमें देखा और पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम लोगों ने उनसे कहा कि हम सड़क के नीचे अगले गांव में जा रहे हैं। हर गांव में हमने यही कहा कि हम अगले गांव में जा रहे हैं। पिछले 5 दिनों से हम सड़क पर ही हैं।
इनमें से कुछ लोगों को इराकी सेना से भी मदद मिली, हालांकि मदद तक पहुँचने के लिए भी लंबा रास्ता तय करना पड़ा। एक शख्स ने बताया,
हमें सुरक्षा बलों में से किसी का नंबर मिला। उन लोगों ने हमसे संपर्क में रहने को कहा। उन्होंने हमसे अपनी ओर ड्राइव करने को कहा। हमने अपनी गाड़ी का ब्यौरा उनको दिया। हम लोगों ने गाड़ी पर सफेद झंडा लगा रखा था और यहाँ तक पहुँचने तक ड्राइव करते रहे।
कुछ लोग तो बस किसी तरह जान बचाकर भागे। उन्होंने अपने सामान या घर की भी परवाह नहीं की।
हम पूरे रास्ते दौड़ते रहे, तब तक दौड़ते रहे जब तक कि यहाँ नहीं पहुँच गए।
भागने में सफल रहे लोग अब आईएस के चंगुल से निकलने पर राहत महसूस कर रहे हैं, हालांकि बीते समय का डर उनके दिलो दिमाग पर हावी है।
आईएस लड़ाके हमारे लिए भयानक थे। हमारी हालत दयनीय थी। हमें पर्याप्त खाना नहीं मिलता था। लोग काम नहीं कर सकते थे, वो अपना घर नहीं छोड़ सकते थे, वो लोग हमें मार रहे थे। मैं अब सुरक्षित महसूस कर रही हूँ, लेकिन मेरा दिल मेरे परिवार के लिए दुखी है। आपका भाई, माँ, पिता अगर मौत का सामना कर रहे हों तो आप अच्छा कैसे महसूस कर सकते हैं? हम दुखद स्थिति में जी रहे हैं।
इराकी सेना ने कुर्द लड़ाकों के साथ मिलकर मोसुल को मुक्त कराने के लिए धावा बोला है। उन्हें अमरीकी सेना की तरफ से हवाई सुरक्षा घेरा भी मुहैया कराया गया है। मोसुल 2 साल से कथित इस्लामिक स्टेट के कब्जे में है।
मोसुल की दुखद तस्वीर, जो कि पिछले 2 साल से इस्लामिक स्टेट के कब्जे में है।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 31, 25 और 19 मीटर बैंड यानी 9835, 9915, 11995 और 15510 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। रुख भारत का करते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में पारिवारिक विवाद अपने चरम पर पहुंच गया है। कल देर रात तक नेता विवाद सुलझाने के लिए बैठकें करते रहे। मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के यहां अलग से समर्थकों की बैठकें होती रहीं। मुलायम सिंह यादव ने सोमवार को विधायकों की एक बैठक बुलाई थी, लेकिन अखिलेश यादव ने उससे एक दिन पहले यानी कि आज विधायकों की बैठक बुलाकर सीधे तौर पर पार्टी व मुलायम सिंह को चुनौती दी है। इस विवाद के अंत के कोई आसार हैं या नहीं, सुनिए लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
समाजवादी पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई अब सीधे तौर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव के बीच होती दिख रही है। विवाद सुलझाने की तमाम कोशिशों के बावजूद ये उलझता ही जा रहा है। बताया जा रहा है कि कल की बैठक में मुलायम सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं के बीच यह तक कह दिया कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनका फोन तक नहीं उठाते हैं। मतभेदों के बारे में पूछने पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अशोक वाजपेयी कहते हैं, उधर पार्टी की कल हुई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में अखिलेश यादव के एक और करीबी एमएलसी उदयवीर सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। उदयवीर सिंह ने पिछले दिनों मुलायम सिंह यादव को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें पार्टी की कमान अखिलेश यादव को सौंपने का सुझाव दिया गया था। बताया जा रहा है कि इस चिट्ठी से मुलायम सिंह यादव बेहद खफा थे, क्योंकि इसमें उनके पारिवारिक मामलों का भी सार्वजनिक तौर पर जिक्र किया गया था। इस बीच मुलायम सिंह यादव ने पार्टी के सभी विधायकों की सोमवार को एक बैठक बुलाई है, जिसका मुख्य एजेंडा 5 नवंबर को होने वाले स्थापना दिवस समारोह पर चर्चा करना है। लेकिन जानकारों का कहना है कि इस बैठक में मुलायम सिंह यादव कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन बैठक से ठीक पहले विधायकों को आज अखिलेश यादव ने भी बुलाया है। पार्टी के कई नेता इस बैठक की जानकारी न होने की बात कर रहे हैं, लेकिन अशोक वाजपेयी इसकी पुष्टि करते हैं।
अब ये बात तो मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं कि क्यों बुलाई है, लेकिन बुलाई तो है जो सूचना आ रही है।
वहीं जानकारों का कहना है कि इस बैठक से पता चलता है कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह को सीधे चुनौती देने के मूड में हैं। लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार सुभाष मिश्र कहते हैं,
कई प्रयास हुए अखिलेश यादव को मनाने के, समझाने के, लेकिन सब विफल हो गए। राधर अखिलेश यादव जो अपना उनका स्टैंड है उसको फर्दर इंटेंसिफाई करते जा रहे हैं और युवाओं को, विधायकों को और जो भी उनके विशेष लोग हैं उनको सबको मोबिलाइज कर रहे हैं। उनका ये जो शो है उससे पार्टी के नेतृत्व से फर्दर दबाव यही है कि या तो आप सब लोग मेरे पीछे आइए, मेरी रथ यात्रा के पीछे पीछे चलिए, नहीं तो हमने घोषणा कर दी है, हमने अपना रास्ता तय कर।
इस बीच चर्चाएं ये भी हैं कि बड़ा फैसला मुलायम सिंह ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव भी लेने की तैयारी में हैं। अब ये बड़ा फैसला क्या होगा और कब होगा, इसका इंतजार तमाम लोगों के अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं को भी है। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
समाजवादी पार्टी में पारिवारिक विवाद अपने चरम पर है। और कार्यक्रम में अब वक्त है अखबारों के पन्ने पलटने का। मानसी, क्या कह रहे हैं आज के अखबार?
जनसत्ता की पहली खबर आपको बता दूं, पहले पन्ने पर जी सबसे बड़े अक्षरों में इसने छापी है खबर, बौखलाई पार्क ने सीमाई गांव को बनाया निशाना। अखबार ने लिखा है कि कठुआ में शुक्रवार को अचानक हमले के जवाब में बीएसएफ की कार्रवाई में 7 रेंजरों की मौत से बौखलाए पाक बलों ने नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी तेज करते हुए जम्मू जिले के आरएसपुरा सेक्टर में सीमा के पास के गांवों और चौकियों को निशाना बनाकर रात भर मोर्टार बम दागे और स्वचालित हथियारों से गोलीबारी की। उधर अंग्रेजी के हिंदुस्तान टाइम्स और दी इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर जो खबर छापी है वो है करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल की, जो अगले सप्ताह रिलीज होने वाली है। बॉलीवुड निर्माता इस बात पर राजी हो गए हैं कि अब वे भविष्य में पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर काम नहीं करेंगे। निर्माता इस बात पर भी राजी हो गए हैं कि पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर बन रही फिल्मों को आर्मी वेलफेयर फंड में प्रायश्चित के तौर पर 5 करोड़ रुपए देने होंगे। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस राशि को पाक टैक्स कहा है। इंडियन एक्सप्रेस की बात करूं तो अखबार ने शीर्षक दिया है फडणवीस सरेंडर्स टू ठाकरे राज, यानी फडणवीस ने ठाकरे राज के सामने घुटने टेक दिए। अखबार का कहना है कि फिल्म की रिलीज को रोकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा करने वाले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दबाव में आ गए हैं।
और इसी पर एक कार्टून है, जनसत्ता में है और ये इरफान का कार्टून है, ए दिल है मुश्किल में मुश्किल जो है वो शब्द को काट रहे हैं राज ठाकरे। इसका मतलब ये कि ये जो फिल्म है वो रिलीज होगी।
हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक और खबर आपको बता दूं। इस खबर के मुताबिक चीनी पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक और चावड़ी बाजार इलाकों में चीनी पटाखे बिक रहे हैं। अखबार ने लिखा है कि पटाखे बेचने वाले एक फेरी वाले के अनुसार बच्चों को कुछ खास तरह के पटाखे जो हैं पसंद आ रहे हैं और बाजार में इनकी बहुत मांग है। पायोनियर में छपी एक खबर के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने 6 सालों के दौरान 22 लाख ऐसे एजेंटों को हटा दिया जो लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहे थे।
22 लाख
जी,
वाह।
इतने बड़े पैमानों पर की गई एजेंटों की छटनी के बाद प्रीमियम संग्रह और नई पॉलिसियों की बिक्री में 25% तक गिरावट दर्ज हुई है।
बहुत बहुत शुक्रिया मानसी दास अखबारों की समीक्षा के लिए।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
उड़ी हमले के बाद भारत की ओर से की गई कथित सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से जिस तरह से बार बार सेना का नाम राजनीतिक हलकों में इस्तेमाल हो रहा है उससे सेना के ही कुछ लोग खुश नहीं हैं। उन्हें लगता है कि सेना का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। इस बीच ए दिल है मुश्किल फिल्म को रिलीज कराने के लिए महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र नव निर्माण सेना और फिल्म बनाने वालों के बीच जो समझौता हुआ है उससे भी सेना से जुड़े कई लोग बेहद खफा हैं। सेवानिवृत्त जनरल अशोक मेहता से हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने बात की। BBC से बातचीत में उन्होंने इन सब पर अपनी नाराजगी जताई, साथ ही पाकिस्तानी कलाकारों पर रोक लगाने की भी आलोचना की। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारे प्रधानमंत्री से लेकर BJP के राष्ट्र प्रेसिडेंट हैं उनके और रक्षा मंत्री पारिकर साहब, इन सब का जो कार्रवाई हुई है से हमारी फौजें वो तो बोलती नहीं है और हम लोग जो बोल पाते हैं वो बड़ी धीमी आवाज में बोलते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा जो इस मर्तबा मैं देख रहा हूँ ये बिल्कुल इर्रेस्पॉन्सिबल, ये जो हमारी फौज को राजनीति के लिए, चुनाव के लिए, उसके फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ये काफी वाहियात बात है। और इसमें खासकर जिनके मैंने नाम लिए हैं, खासकर मैं अपने रक्षा मंत्री की बात करूंगा कि ये लोग फौज की बड़ी तारीफ करते हैं और एक्चुअली वो फौज की तारीफ नहीं कर रहे। ये जो अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है ये नाम तो फौज का लेते हैं लेकिन उनका मतलब अपनी पार्टी का है, क्योंकि जो चीजें उनको फौज के लिए करनी चाहिए वो नहीं करते वो बोलने के बावजूद। तो मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। मैं एक पुराना सिपाही हूँ लेकिन अभी का जो दौर है, ठीक है ये सरकार ने पॉलिटिकल विल दिखाई, राजनीतिक दृढ़ता दिखाई कि लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया, लेकिन अपनी काबिलियत की बात करते हैं।
ये जो सिनेमा वाला जो प्रकरण हुआ है कि एक फिल्म को रिलीज करने से पहले जिसमें पाकिस्तानी कलाकार हैं उसके लिए कहा जा रहा है कि सेना के रिलीफ फंड में 5 करोड़ रुपए देंगे तो वो फिल्म में पाकिस्तानी कलाकारों को शामिल करा सकते हैं, ये कितना उचित मानते हैं आप?
नहीं, मैं बिल्कुल उचित नहीं मानता। अब इनके ऊपर दबाव पड़ा फिल्म इंडस्ट्री का और उन्होंने कॉम्प्रोमाइज के लिए उन्होंने कह दिया कि 5 करोड़ डाल दीजिए। अरे पैसे की बात थोड़ी है, ये फौज की इज्जत की बात है। तो ये पैसे की बात नहीं, एक तरफ कलाकारों की बात कर रहे हैं, आर्ट की बात कर रहे हैं, वो सब अपनी राजनीति करते हैं, तो आखिर में 5 करोड़ की बात पैसे की बात नहीं है, ये राजनीति की बात है। राजनीति में फौज को क्यों मिलाते हैं? फौज, अब हमारे रक्षा मंत्री हनुमान की बात करते हैं फौज के बारे में कि जैसे हनुमान की तरह हमने फौज को बना दिया, ये आरएसएस की तरह बना दिया। अभी बिल्कुल वाहियात बातें हैं।
पाकिस्तानी कलाकारों पर जो प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है वो कितना सही मानते हैं आप?
उसको सही नहीं मानता। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कोझिकोड में कि ये हमारी जो खिलाफत कर रहे हैं पाकिस्तानी जनता के विरुद्ध, ये हमारी पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी ISI, तो हम इसमें पाकिस्तान सिविल सोसाइटी और आर्ट और लिटरेचर और कल्चर को क्यों जोड़ रहे हैं? इसके साथ सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल सहमत, इनको क्यों हम जोड़ रहे हैं?
जनरल अशोक मेहता से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी निखिल रंजन। और अब बारी है आज के न्यूज मेकर्स की। आज भारतीय टेस्ट कप्तान विराट कोहली पर लिखी किताब ड्रिवन द विराट कोहली स्टोरी के लेखक विजय लोकपल्ली से खास बातचीत। सुनिए कुछ ऐसी बातें जो आज तक कोहली के बारे में आपने कभी नहीं सुनी। प्रस्तुत कर रहे हैं बीबीसी न्यूज मेकर्स हमारे सहयोगी वैभव दीवान।
हेलो, हाय, मैं हूं वैभव, वेलकम है आपका बीबीसी न्यूज मेकर्स पर। और आज मेरे हाथ में जो ये किताब है ये है इस हफ्ते की न्यूज मेकर। टाइटल है ड्रिवन द विराट कोहली स्टोरी। इस कवर पेज पर विराट कोहली स्ट्रोक लगाते हुए दिख रहे हैं और नीचे लिखा है नाम विजय लोकपल्ली का जिन्होंने इस किताब को लिखा है और ब्लूम्सबरी ने इस किताब को पब्लिश किया है। तो इसलिए बीबीसी न्यूज मेकर्स पर वेलकम करते हैं किताब के राइटर ऑथर विजय लोकपल्ली को। सर, वेलकम है आपका बीबीसी न्यूज मेकर्स पर। आपकी किताब ड्रिवन कोहली के बारे में क्या बताती है?
ये विराट की ऑटोबायोग्राफी नहीं है, ये विराट की बायोग्राफी नहीं है, ये मेरी एक कोशिश है कि मैं आपके सामने जैसे कहते हैं मेकिंग ऑफ विराट, कि विराट कैसे बना, कौन लोग उसके पीछे थे, उसके कोच, उसके दोस्त, उसकी फैमिली, उसके खिलाड़ी, साथी खिलाड़ी, उन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया एक चैंपियन क्रिकेटर तैयार होने में।
पर विजय सर, अभी तो कोहली सिर्फ 28 साल का है, किताब लिखे जाने के लिए वो काफी यंग है, अभी तो कितना क्रिकेट है उसमें बाकी खेलना, तो अभी क्यों आपने किताब लिख दी?
अभी क्यों नहीं, क्योंकि अगर आप देखें अभी पीक पे नहीं है, अभी पीक तो उनका आना है, अभी बहुत लंबा रास्ता है। पर विराट कोहली पे बहुत, आपने बहुत देखा होगा, लिखा गया है, लेकिन मैं आपको आश्वासन ये देना चाहता हूँ कि इस किताब में आपको एक अलग विराट कोहली मिलेगा जो आपको फील्ड पे नहीं दिखता है, जो आप, मतलब मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं इंटरेक्ट कर पाता हूँ, बहुत लोग नहीं इंटरेक्ट कर पाते, उनको पता नहीं असली विराट कोहली क्या है, वो आपको इस किताब में मिलेगा।
विजय सर, ये लड़का विराट, ये स्पॉट कैसे हुआ था?
राजकुमार बोलते हैं कि उसे एक थ्रो से उनको लग गया कि ये अलग है। देखिए, इस बच्चे ने, वो कहता है, थ्रो मारा फ्लैट और लाइटनिंग, मतलब गोली की तरह, और उसमें बड़ा टेक्निकल चीज़ थी कि थ्रो जिस ढंग से मारा सीधा टॉप ऑफ द स्टम्प्स आया है वो थ्रो। उस उम्र में उस बच्चे को इतना क्रिकेटिंग एक्यूमेन था, उसका दिमाग था कि ये थ्रो कितनी स्पीड से फेंकना है, और डायरेक्शन भी है, एक्यूरेसी भी है, ये नहीं कि उसने उठा के फेंक दी बॉल, अगर आप ऊपर फेंकेंगे तो जब तक बॉल डिप करेगा बैट्समैन नज़र आ जाता है, फ्लैट थ्रो सीधे कीपर के ग्लव्स में, तो आपको कोच की बात माननी पड़ेगी, उसको लगा कि इसमें कुछ, ये कुछ है लड़का।
विजय सर, कर्नाटका के साथ था वो रणजी मैच, शाम को एक बुरी खबर आई, विराट के पापा, उनका सबसे बड़ा सपोर्ट, वो चल बसे, पर विराट उस मैच में उतरा, अपनी बैटिंग ली। उस दिन आप भी वही ग्राउंड पर थे, किताब में लिखे उस चैप्टर के बारे में थोड़ा बताइए।
उस दिन जब ग्राउंड पहुंचे तो हमको मालूम पड़ा कि ऐसे हादसा हुआ है, तो लग ही नहीं रहा था ये आएगा ग्राउंड, और मेरी आदत है मैं ग्राउंड बहुत पहले चला जाता हूँ। फिर हल्के हल्के प्लेयर्स आने शुरू हुए, कर्नाटक की टीम आई, और देखो तो ये आदमी, ये भी आ गया, ये पहुँच गया, ये ग्राउंड पहुँच गया। चेतन चौहान हैरान हो गए, उसको पूछा तू क्या कर रहा है, आई मीन ऑब्वियसली आप नहीं एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसने कहा मैं बैटिंग करने आया हूँ, खेलने आया हूँ, और पैड वैड बांध के बैठ गया पहले ही। आप सोचिए, मतलब इसका कमिटमेंट, मुझे याद है मैं अभी चाय टी इंटरवल में बहुत देर इसके साथ बैठा जाके, बहुत देर बैठा और रोया नहीं है, इसके आंसू थे क्योंकि इसको अंपायर ने गलत आउट दे दिया था, वीडियो एनालिस्ट के उसमें देखा हमने, आउट नहीं था, वरना इसका 100 भी होता। तो सुबह के आंसू, शाम के आंसू, ये बटोर के वहाँ से सीधा फ्यूनरल में गया, और वो दिन मतलब चैप्टर का नाम ही यही है, बॉय टू मैन। उस दिन एक्चुअल उसमें ये ही बिकेम अ मैन, और उसके बाद इसने पीछे मुड़ के देखा नहीं।
ऐसा खेलता रहा तो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा।
अभी ये फॉर्म देखिए ना, वेस्ट इंडीज़ का और न्यूजीलैंड वाला, और जब इंग्लैंड की टीम आएगी मुझे पूरी उम्मीद है इंग्लैंड का अच्छा अटैक है तो ये अपना लेवल भी ऊपर लेके जाएंगे। विराट में ये क्वालिटी है, काफ़ी रिकॉर्ड जो है तोड़ देंगे। आने वाला वक्त याद रखेगा विराट को, जो क्रिकेट के लिए एक बहुत अहम प्लेयर आया है।
विजय सर, आपकी किताब ड्रिवन द विराट कोहली स्टोरी, आई होप लोगों को पसंद आए। आपने विराट से जुड़े किस्से हमारे साथ शेयर किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विराट कोहली के बारे में इतना कुछ बीबीसी हिंदी के जरिए पहली बार आपने रेडियो पर सुना। कैसा लगा आपको इस हफ्ते का बीबीसी न्यूज मेकर्स, आप हमें ट्वीट करके बता सकते हैं। बीबीसी हिंदी का ट्विटर हैंडल है @BBCHindi। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करके भी वहां पर शेयर कर सकते हैं अपना मैसेज। मैं वैभव मिलूंगा जल्द, लेकर आऊंगा एक और नई बीबीसी न्यूज मेकर्स पर हस्ती नेक्स्ट वीक। करता हूँ अपना माइक ऑफ।
और खेल की बड़ी खबर ये कि भारत कबड्डी का विश्व चैंपियन हो गया है। इस खबर और बाकी अन्य खबरों के साथ है आदेश कुमार गुप्त।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। अहमदाबाद में कल कबड्डी वर्ल्ड कप का फाइनल मेजबान भारत और ईरान के बीच खेला गया। इसे भारत ने 38-29 से अपने नाम किया। मध्यांतर तक ईरान ने अपने मजबूत डिफेंस और जोरदार अटैक के दम पर 18-13 की बढ़त बनाई हुई थी। पहले हाफ में ईरान के अबुल फजल, मिराज शेख और गुलाम अब्बास ने अपनी रेड पर लगातार अंक जुटाए। दूसरे हाफ में अजय ठाकुर ने विराज को आउट कर बाहर भेजा और भारत के खेमे में नया जोश पैदा किया। लेकिन जब स्कोर 17-19 था तब प्रदीप नरवाल को ईरानी खिलाड़ियों ने दबोच लिया। इसके बाद अजय ठाकुर ने अपनी रेड पर मिराज को आउट कर भारत को पहली बार 21-20 से आगे किया। इसके बाद ईरान की टीम ऑल आउट हो गई और भारत का स्कोर 24-21 हो गया। इसके बाद अजय ठाकुर ने सुपर 10 के जादुई अंक को छुआ। उन्होंने अपनी रेड पर ईरानी कप्तान को आउट किया। अब भारत 26-21 के स्कोर के साथ 5 अंकों की बढ़त ले चुका था। अंततः भारत ने ईरान को 38-29 से हराकर कबड्डी विश्व कप जीत लिया। जीत के हीरो अजय ठाकुर रहे, जिन्होंने 17 रेड में 12 अंक हासिल किए। उधर भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज मोहाली में तीसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा। इससे पहले न्यूजीलैंड ने दिल्ली में खेले गए दूसरे मैच में भारत को 6 रन से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल की थी। कल भारत के लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने टीम की रणनीति को लेकर कहा,
थोड़ा सा हमें और इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि इम्प्रूव का एरियर हमेशा होता है। हमें लगता है कि और थोड़ा अच्छे से बात करके हम अच्छी स्ट्रेटेजी बना के इस मैच में उतरेंगे और कोशिश करेंगे ये मैच यहाँ पे हम जीते।
उधर चिटगांव में बांग्लादेश और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां कल खेल के तीसरे दिन इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 8 विकेट खोकर 228 रन बनाए थे। बेन स्टोक्स 85 और जॉनी बेयरस्टो 47 रन बनाकर आउट हुए। बांग्लादेश के साकिब अल हसन ने 79 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। इससे पहले बांग्लादेश की पहली पारी 248 रनों पर समाप्त हुई और इंग्लैंड को पहली पारी के आधार पर 45 रनों की बढ़त मिली। अब इंग्लैंड के पास 273 रनों की बढ़त है और उसके 2 विकेट बाकी हैं। वहीं दुबई में पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां कल खेल के दूसरे दिन वेस्टइंडीज का स्कोर 4 विकेट खोकर 106 रन था। इससे पहले पाकिस्तान की पहली पारी 452 रन पर समाप्त हुई। पाकिस्तान के यूनिस खान ने 127 और कप्तान मिसबा उल हक ने 96 रन बनाए।
और कार्यक्रम में इससे पहले कि आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। तुर्की ने कहा है कि इराकी शहर मोसुल को खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले इस्लामी चरमपंथी समूह के कब्जे से छुड़ाने की मुहिम में वो शामिल होना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने खुद पर लगे आर्म्स डील के लिए जानकारी लीक करने के आरोपों का खंडन किया है। वरुण गांधी पर आरोप लगे हैं कि हनी ट्रैप के जरिए उन्हें फंसाया गया और फिर उन्होंने हथियार निर्माताओं को रक्षा मामलों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां लीक की थीं। अमरीकी विसल ब्लोअर एडमंड्स एलन के कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे अपने पत्र में यह आरोप लगाया गया था कि वरुण गांधी को रक्षा समिति से जुड़ी जानकारियां देने के लिए ब्लैकमेल किया गया था। सीरिया में रूस की तरफ से घोषित किए गए 3 दिन के एकतरफा युद्ध विराम के खत्म होने के बाद अलेपो शहर में भारी लड़ाई और हवाई हमले शुरू हो गए हैं। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाला देवाशीष ने, घंटे भर बाद विश्व भारती कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।